ओम शांति। प्यारे बाप दादा, सर्व दादियां, सर्व मधुबन निवासी भाई बहने तथा हमारी ओर से दिल्ली दरबार से आए हुए सभी भाई बहनों का बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जोरदार तालियां अपने लिए जरूर बजाएं। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि में आप सभी पधारे हैं भट्ठी करने लिए। बहुत ही भाग्यशाली हैं, कई भाई बहनों के नाम होंगे लेकिन ऐन मौके पर उनका आना संभव नहीं हुआ तो वो नहीं आ सके, और ऐसे भी होंगे जो जिनका नाम नहीं था लेकिन ऐन मौके पर उन्हें कहा गया कि अगर आप आन जाना चाहो तो जा सकते हो, एक सीट खाली है, और आपने स्वीकृति दी और स्वीकार कर लिया और आप पहुंच गए। तो हम तो यही कहेंगे कि जो पहुंच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली हैं, तो अपने भाग्य के लिए और ताली। आप सभी ने बैज पहन रखा है जरूर, और इस पर लिखा है योग तपस्या भट्ठी संपन्नता की ओर। समय नाजुक होता जा रहा है, बाबा हम बच्चों को संपन्न बनने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं, बाप समान बनना है, उसके लिए पहले कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है, ब्रह्मा बाबा के कदमों पर चलना है उसके लिए, और फिर फरिश्ता बन करके घर लौटना है। और उसके बाद बाबा कहते हैं देवता बनकर इस सृष्टि पर आना है। तो बहुत सुंदर उद्देश्य बाबा ने हमें दिया है कि मनुष्य से देवता बनना है, पर देवता बनने से पहले कितनी सारी बातें हैं जिनको पार करना है। तो सबसे पहला लक्ष्य तो यही होगा कि हमें कर्मातीत बनना है। सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होना है, 63 जन्मों के पाप कर्म हमारे सिर पर बोझा के रूप में पड़े हैं, उनको भी खत्म करना है, और 21 जन्मों की कमाई करनी है। मानो पूरे 84 जन्मों का हिसाब यहाँ ही ठीक करना है, 63 जन्मों का कर्जा चुकता करना है और 21 जन्मों की कमाई करनी है। तो कितना काम करना होगा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने हम बच्चों को दी है, नए विश्व का निर्माण करना। और उसके लिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो, और सबसे बड़ी मदद आपकी यही होगी कि हम अपना जीवन पवित्र और योगी बनाएं। तो शुरू से लेकर के यही बाबा ने सबसे प्रतिज्ञा कराई, संकल्प लिया कि जीवन को पवित्र योगी बनाना है, तब ही इस विश्व का परिवर्तन होगा, तब ही ये संसार बदल सत्युग आएगा। अब उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को, जैसे आज की मुरली बाबा की चली, उसमें बाबा ने यही कहा कि याद और सेवा से अपनी नेचर क्योर करनी है। नेचर क्योर आजकल बड़ा क्रेज है इसका, प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि समझते हैं इतनी बीमारियां बढ़ रही है तो नेचर क्योर ही एक तरीका है। ये एलोपैथी दवाइयां तो और ही बीमारियों को दबाते हैं लेकिन खत्म नहीं करते। तो जैसे ये शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, पंच तत्व इस शरीर के अंदर है अपने अपनी परसेंटेज में, उसी अनुसार ये नेचर क्योर भी करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। मिट्टी से भी स्नान करवाएंगे, तेल से स्नान करवाते हैं और बहुत कुछ शरीर के लिए करते हैं। नेचुरल चीज़ें जो प्रकृति से निकली है उसी का ही उपयोग कराते हैं। तो हम देखते हैं कि उससे शरीर का तो अवश्य स्वास्थ्य बनता है, नो डाउट, लेकिन वो सदा ही स्वास्थ्य बना रहे उसके लिए पहले मन को स्वस्थ करना होगा। अगर मन स्वस्थ किया ही नहीं और केवल शरीर के स्वास्थ्य के पीछे जाते हैं और फिर चलो 8 दिन 10 दिन तो नेचर क्योर में गए, बहुत अच्छा लगा, चलो ब्लड प्रेशर कम हो गया, शुगर कम हो गई, मानो जो भी हुआ वो सब फायदा हुआ। अब वो जब पूरा हुआ वापस आए तो फिर वैसे का वैसा, फिर वही खाया पिया। हाँ, तो जो थोड़ा बहुत वजन कम कर किया नेचर क्योर करके, फिर वापस आ गया और ही डबल हो गए क्योंकि लोभ पर तो जीत पाई नहीं, अपने जिबान पर तो जीत पाई नहीं है? तो और ईर्ष्या द्वेष से तो दूर रहे नहीं, तो मन को तो स्वस्थ किया ही नहीं, केवल तन को ही स्वस्थ किया, तो फिर वापस वही तन फिर रोगी बन जाता है। इसीलिए मेडिकल साइंस भी यही कहती है ना कि 80-90% जो शरीर के रोग हैं वो साइको है, ये मेंटल है, मन का असर तन पर पड़ता है। तो 80-90% शरीर के रोगों का कारण अगर मन है तो पहले किसको ठीक करना है? मन को ठीक करना है। अब मन को ठीक करने के लिए तो कोई दवाई है ही नहीं। एक मिसाल देते हैं, एक डॉक्टर हमारे पास आए थे, तो उस डॉक्टर से मैंने पूछा कि आप यहाँ कैसे आए, बड़ा सर्जन बड़ा था, तो कैसे आपको यहाँ का कांटेक्ट मिला यहाँ आई? तो कहा मेरे पेशेंट ने मुझे भेजा। तो हमने कहा अच्छा, वैसे तो पेशेंट भेजे डॉक्टर को ये नहीं होता, डॉक्टर पेशेंट को भेजते हैं ना कि आप मेडिटेशन सीखे, खास करके जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर ज़रूर सलाह देते आप मेडिटेशन सीखो। तो या तो पेशेंट ने डॉक्टर को कहा, तो क्या, तो हमने कहा कि क्या आपको कहा उसने? तो उसने कहा कि जैसे वो मरीज मेरे पास आया, उसको जो बीमारी थी वो बताई, तो डॉक्टर ने उसको यही कहा कि डोंट वारी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, दवाई है सब आपको देंगे, आपकी बीमारी दूर होगी, चिंता मत करो। तो 2-3 बार डॉक्टर ने कहा चिंता मत करो, डॉक्टर कहते हैं, लेकिन उसको गुस्सा आ गया पेशेंट को, डॉक्टर साहब आप कहते हो चिंता मत करो, पर कैसे चिंता ना करें वो तो बताओ, केवल चिंता मत करो कहते हो। तो डॉक्टर खुद सोच में पड़ गया, हाँ कैसे चिंता न करे वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ। तो फिर चलो, वो जो बीमारी थी वो कैंसर की बीमारी थी, कैंसर उसका डिटेक्ट हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा ये दवाई लो। फिर दोबारा गया, तब तक उस व्यक्ति ने मेडिटेशन सीखना शुरू किया था और डॉक्टर ने तो उसको कहा कि आप छह मास से ज्यादा नहीं जिएंगे, लेकिन 3 साल तक जिया, चलता रहा। मतलब बीमारी कैसे गई वो खुद भी आश्चर्य खाने लगा। तो फिर डॉक्टर के पास गया, अब 6 महीने के मेहमान हो इतना ही कहा, और ये तो 3 साल के बाद आया और इतना स्वस्थ। तो डॉक्टर ने पूछा कैसे हुआ, तो कहा डॉक्टर साहब आपने कहा ना चिंता मत करो, तो सचमुच मैंने मेडिटेशन सीखा और मैं चिंता मुक्त हो गया और उसके कारण मैं इस बीमारी से मुक्त हो गया। तो चिंता सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को चिंताओं से मुक्त करते हैं और नेचर क्योर, हमारे स्वभाव को क्योर करते हैं, क्योंकि स्वभाव संस्कार वो भी नेचर है। प्रकृति को भी नेचर कहते हैं और स्वभाव को भी नेचर कहते हैं, तो ये दोनों प्रकार का नेचर है। तो जब अंदर का नेचर क्योर होगा तब बाहर का नेचर क्योर होगा। और अगर साइकोसोमेटिक डिजीज है तो साइको को अगर हमने ठीक कर दिया मानसिक, तो सोमेटिक तो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि कई कारणों से शरीर के रोग आते हैं, कोई पोल्यूशन है, कुछ है, कई बातें होती है, कर्मों का हिसाब किताब भी है, पिछले जन्मों का वो भी है। लेकिन अगर मन को हमने ठीक किया तो ऑटोमेटिकली शरीर के रोग भी अपने आप ठीक हो जाते हैं, शरीर में वो ताकत है। परंतु मन इतना कमजोर है, मन इतना नेगेटिव सोचता है, तो परिणाम स्वरूप उसका असर तो तन पर पड़ता ही है ना। इसीलिए बाबा ने हमको कौन सी चिकित्सा सिखाई है, मन को कैसे ठीक करो, और उसके लिए आज बाबा ने कहा याद और सेवा। ये 2 कदम है नेचर क्योर के, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को ठीक करने के लिए। तो योग से कैसे हमारा स्वभाव ठीक होता है, क्योंकि योग से हमें पता चलता है कि मैं वास्तव में एक शुद्ध आत्मा हूं। जो बाबा कहते हैं योग की गहराई में हम जाते हैं, अंदर गहराई में जाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो बहुत विस्तार है। ज्ञान विस्तार होते हुए भी बीज भी है, बीज से झाड़ निकलता है, तो विस्तार बहुत है ज्ञान का, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, ये बहुत ज्ञान का विस्तार है, वो झाड़ की तरह है। लेकिन बीज हमारे कैड प्रोजेक्ट में यही बताते ABCD, बस ये बीज है, आत्मा, बाबा, चक्र और ड्रामा, बस ये ABCD। इसको समझ लिया तो आप शरीर के रोगों से भी मुक्त हो सकते हो, आपका कोरोनरी आर्टरी जो है वो रिग्रेशन होने लगेगा, आपका खत्म होगा। तो सार रूप में भी है ज्ञान, फिर उसका भी सार रूप है मन मना भव। बाबा कहते हैं सारे ज्ञान का सार बस मन मना भव, मुझे याद करो। तो ज्ञान है बीज, तो योग क्या है, याद क्या है। बाबा कहते हैं जैसे बीज को पानी दिया जाता है, तो बीज को पानी देने से क्या होता है, बीज के अंदर जो सुषुप्त शक्ति है, लेटेंट डोरमेंट एनर्जी है उसके अंदर, वो उसका विस्फोट होता है और फल्ले निकलते हैं। तो अंदर की शक्ति बाहर आती है जब उस बीज को पानी देते हैं, धूप देते हैं, मानो वो शक्ति दी उसको और उसकी आंतरिक शक्ति का विकास हुआ। तो योग अर्थात बीज को पानी देना, फिर उसे जो वृक्ष निकला जीवन का, उसमें धारणा हमारा फूल है और सेवा फल है। सेवा एक फल है, सेवा से फल मिलेगा वो बड़ी बात नहीं है, वो तो होगा। कहते हैं ना कर सेवा तो मिले मेवा, तो कर सेवा तो मिले मेवा ये तो हर एक जानता है, लेकिन सेवा ही मेवा है, क्योंकि सेवा से जो खुशी मिलती है वो खुशी ही हमारी शक्ति का आधार है। कि चाहे तन से सेवा, चाहे मन से सेवा, चाहे धन से सेवा, चाहे वाचा से सेवा, चाहे कर्मणा से सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा भगवान के घर में हम करते हैं, चाहे अपने घर में भी करते हैं, पर सेवा समझकर करते हैं, मेरापन नहीं, ट्रस्टी होकर के करते हैं, तो वो सेवा भी बहुत खुशी देती है। क्योंकि हम यही कहते हैं ना, एवरी टास्क इज अ डिग्निटी, हर कार्य जो हम करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, तो कितना एक वो पवित्रता चाहिए। आज भी बाबा ने कहा कि कैसे श्रीनाथ द्वारे में जब भोजन पकाते हैं भगवान को अर्पित करना है तो मुख पर पट्टी बांधते हैं। वो मैं गई हूँ देखने श्रीनाथ द्वारे में कैसे वहाँ लड्डू बनाते हैं ना, श्रीनाथ को, श्री कृष्ण को, तो इतने बड़े बड़े लड्डू श्रीनाथ द्वारे में बनते हैं। तो वो जब बनाते हैं तो बिल्कुल आवाज़ नहीं, बिल्कुल साइलेंस में, श्रीनाथ की याद में बनाते हैं, मुंह पर पट्टी बांधकर। हम मैं तिरुपति गई थी, वहाँ भी किचन में गई थी देखने के लिए, और ऐसे बिल्कुल साइलेंस में मुख पर पट्टी बंधी हुई और प्रसाद बनाते हैं। तो क्योंकि भगवान को अर्पित करना है, मानो ये कितना बड़ा कार्य है, ये ईश्वर का कार्य है, भगवान का कार्य है, तो कितनी उस सैंक्टिटी से, उस पवित्रता से हमें बनाना है। ऐसे भी कहते भोग बनाना है तो बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम पहले से ही सफाई अच्छी तरह हो, तब बाबा का भोग बनाते हैं। किसको किसको अर्पित कर रहे हैं, तो वो सफाई जरूरी है, वो तो है ही, तो इसीलिए सेवा ही मेवा है। जिस सेवा करने से हमको वो जो खुशी मिलती है, फिर चाहे सेंटर पर करे, चाहे घर में भी करे, तो भी वो सेवा का रूप माने। और अगर बाबा की याद में करते हैं तो फिर अहो सौभाग्य। कई भाई बहने ना शिकायत करते हैं, बहन जी क्या करूं, अकेली हूं, अकेली हूं, अकेला हूं, अकेला इतना करना, इतना करना। अरे बाबा कहते हैं, अकेला क्यों समझ रहे हो अपने आप को, आप अकेले थोड़ी हो, आप अकेले हो, हजार भुजाओं वाला भगवान आपके साथ है, कौन कहता अकेले। अकेले हैं अगर ऐसे सोचते हैं तो बोझ लगता है, भारीपन आता है, पर हजार भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है तो कोई भी बड़ा काम भी छोटा हो जाता है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, तो डर खत्म हो जाता है, थकावट खत्म हो जाती है, बोझ खत्म हो जाता है, और उसके लिए कर रहे हैं तो कितना हल्कापन भी आता है। तो याद और सेवा से नेचर क्योर होता है। तो कैसे नेचर क्योर होता है, सबसे पहले तो योग द्वारा हम अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करते हैं। जो आंतरिक शक्ति हम कहते हैं सोई हुई है, वो जागती है ना, हम यही कहते हैं ना सबको। कई कहते हैं बस शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, वो तो सब आपके अंदर ही है। शांति आपको बाहर से नहीं मिलेगी, खुशी आपको बाहर से नहीं मिलेगी, ये ऐसे नहीं ये काम करो तो खुशी मिलेगी, पर हर कार्य खुशी से करो, ऐसे कहते हैं ना, तो हर कार्य खुशी से करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। कार्य करेंगे चलो सफलता नहीं मिली तो दुखी हो गए, और सफलता मिली तो थोड़े समय के लिए खुशी होगी, फिर और कार्य होगा, फिर सिर को पकड़ेंगे, अरे भाई ये फिर करना है, फिर बोझ। पर हर कार्य खुशी से करते, और अगर वो ईश्वर का कार्य है तो कितनी खुशी से करेंगे। देखते हैं ना, देखो ये सिख धर्म में ये कितनी बड़ी बात है, कार सेवा को कितना महत्व देते हैं, सरोवर को साफ करते हैं, पानी देते हैं, पिलाते हैं, घर में तो नौकर बैठे हैं, आपको पानी का ग्लास भी नौकर लाकर देंगे, लेकिन गुरुद्वारे में जाकर के खुद पानी देते हैं। क्यों? सेवा, सेवा, सेवा का इतना बड़ा पुण्य समझते हैं। और यहाँ तो बाबा कहते हैं हर कदम पर सेवा है, केवल वाचा की सेवा नहीं है, कर्मणा की सेवा नहीं है, मनसा भी सेवा है। तो जब मनसा भी सेवा है तो हर वक्त सेवा है, परंतु वो सेवा तब हम कर सकेंगे जब हम इतने ही निर्माण भी होंगे, इतना ही लक्ष्य भी होगा कि हम सेवा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इट इज नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। जब हम कोई बड़ा काम करना है तो हम कहेंगे इनको ये काम करना है, इनको ये करना है, इनको वो करना है, मतलब एक एक को कार्य सौंप देते हैं और हर एक अपना अपना कार्य करता है। लेकिन केवल ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि बांट करके कार्य देना है तो कार्य सहज होता है, लेकिन ईच टास्क इज अ डिग्निटी। हर कार्य महान है, फिर चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे पूछा करना हो, चाहे बर्तन मांजना हो। इसलिए बाबा कई बार कहते बर्तन मांजो या भाषण करो, भाषण मांजो या भाषण करो, दोनों बराबर है, दोनों में खुशी अपनी है। ऐसे नहीं केवल भाषण करूंगी तभी खुशी होगी, भाषण मांजूंगी बर्तन मांजूंगी तो खुशी नहीं होगी, वही भगवान का कार्य है। तो जब हर एक कार्य एक महान कार्य है, डिग्निटी है, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन बट डिग्निटी ऑफ वर्क, तो जब वो कार्य होता है तो हर कार्य सहज हो जाता है, क्योंकि मन का परिवर्तन हो गया। और जब मन का परिवर्तन होता है तो हल्कापन आ जाता है। और फिर जब कहते भी शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आपके अंदर है, तो अंदर कैसे है, किसके अंदर है? फिर कई कहते बहन जी अंदर है तो कैसे जाएं अंदर? तो शरीर के अंदर जाने की तो बात ही नहीं है ना, शरीर को काटने से शांति खुशी मिलेगी क्या? तो ये तो आत्मा की चीज है, तो आत्मा के अंदर जाना होगा। तो आत्मा के अंदर जाना अर्थात मन से उसको समझना, और जो अंदर में वो सुषुप्त शक्ति है उसको जगाना। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, शांति है तो अभी है, और अभी नहीं है तो कभी नहीं है। तो कई मुझसे ऐसे कैसे, अगर है तो अभी है, नाउ और नेवर। तो शांति अभी है, तो कितनी दूर है शांति आपसे? हम कहते हैं एक सोच की दूरी पर है। कितनी दूर है शांति हमसे? एक सोच। और वो सोच कौन सी है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, यही ओम शांति। ओम शांति ऐसी सोच है जिस सोच से आत्मा को शांति का अनुभव होने लगता है, वो शांति जो अंदर है वो अनुभव होने लगती है। क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे, यही हम कहते हैं ना, यू आर वॉट यू थिंक। आप जो सोचेंगे वही आप बनेंगे, यू बिकम दैट वॉट यू थिंक दैट यू बिकम। अगर हम ये सोचते मैं तो बहुत अशांत हूं, बहुत अशांत हूं, तो हम कहते दुनिया की कोई शक्ति आपको शांति नहीं दे सकेगी, भगवान भी नहीं दे सकेगा। मैं बहुत अशांत हूँ, भगवान ने कहा तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ओम शांति ओम शांति कहेगा तो भी कहेगा मैं अशांत हूँ। एक जोक सुनाते हैं, मतलब एक सत्य बात है। तो एक भाई हमारे पास आया था, शिविर में आया था, तो कहता है बहन जी मैं बहुत गुस्सा आता है मुझे, मैं कैसे इस गुस्से को खत्म करूँ? तो मैंने उसको ऐसे टाइम तो नहीं था ज्यादा समझाने का, तो मैंने कहा जब भी अंदर में गुस्सा आए ना तब कहो ओम शांति, बस एक लाइन ही कहा उसको, ज्यादा नहीं कहा, ओम शांति, तो देखो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो घर गया, अब जैसे घर गया उसकी पत्नी ने कोई बात कर दी, कोई कंप्लेन कर दी, उसने कहा ओम शांति। फिर गया, फिर माँ ने कुछ और कह दिया, तो माँ को कहा ओम शांति। फिर पड़ोसी ने कुछ और कैसे कह दिया, तो उसने कहा ओम शांति, गुस्से में थोड़ा ओम शांति भी गुस्से में कहा, और फिर कोई दोस्त ने कुछ कह रहा ओम शांति, और वो सोच में पड़ गई ओम शांति कह रहा और गुस्सा भी कर रहा, पर कह रहा है ओम शांति और कैसे कह रहा है गुस्से से, तो गुस्सा तो गया नहीं ना, भले ओम शांति ही कहा। तो इसीलिए ओम शांति केवल कहना नहीं है, परंतु सचमुच मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं ये अनुभव करना है, और सोच में ही है वो अनुभव। इसीलिए बाबा हमको ओम शांति तो पाठ पढ़ाते, और दादी जानकी ने तो 3 बार ओम शांति कहना सिखलाया, ओम शांति, फिर दूसरी बार और जोर से ओम शांति, तीसरी बार और जोर से ओम शांति। क्यों? फिर दादी क्या कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, मैं कौन मेरा कौन मुझे क्या करना है। अभी शक्ति स्तंभ जो दादी जानकी के यादगार में बनाया है उस पर भी यही लिखा है, मैं कौन मेरा कौन और मुझे क्या करना है। ये तीनों ही वाक्य बड़े नशे के महावाक्य है। जैसे ही हम कहते हैं मैं कौन, तुरंत मुझे अपने स्वरूप की अनुभूति होने लगती है, मैं कौन। फिर मेरा कौन, मैं अकेली नहीं हूं, अकेला नहीं हूं, कौन है मेरे साथ। और फिर मुझे क्या करना है, मेरे कर्तव्य मुझे याद आते हैं। और दोनों में ही, तीनों में ही खुशी है, मैं कौन मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो जब बाबा कहते, जैसे आज बाबा ने कहा, याद और सेवा ये नेचर की ओर है, यानी जो हमारी नेचर, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, हम उसको सहज बदल सकते हैं याद और सेवा के बल से। सिर्फ हमारी सोच का परिवर्तन करना होता है और कुछ नहीं। और कई समझते ना, यही तो बड़ा मुश्किल है, बाकी सब काम करना तो बड़ा सहज है, पर सोच में परिवर्तन करना यही मुश्किल लगता है। और बाबा कहते हैं हाँ मुश्किल तो है, लेकिन अटेंशन चाहिए। दादी गुलजार तो यही कहती थी ना, टेंशन टेंशन के पहले एक, उसके आगे ए लगा दो, ए लगा दो तो क्या हो जाएगा, अटेंशन हो जाएगा। तो अटेंशन का मतलब क्या है, ए कौन सा है जो लगाने से अटेंशन होगा, तो ए में तो कई शब्द हैं, अलर्ट भी एक शब्द है, अलर्ट हो गए। तो अगर हम सावधान हैं, हमारी सोच पर हमारा पूरा नियंत्रण है, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सेलरेटर दबाना है, कब गाड़ी को आगे चलाना है, कब रोकना है, अगर मन को ये इस रूप से चला सकें तो अटेंशन क्यों नहीं होगा, क्यों टेंशन होगा। टेंशन क्यों होता है, क्योंकि मन को व्यर्थ गंवा देते हैं, कितने सोच व्यर्थ गंवाते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, ये टेंशन का कारण क्या है, मन और बुद्धि का आपस में संघर्ष। तनाव किसको कहते हैं, मन कुछ और सोचता है, बुद्धि कुछ और निर्णय देती है, और संस्कार तो कुछ अपना ही काम करते हैं। तो तीनों ही आपस में लड़ते हैं, मन बुद्धि संस्कार, और जहां तीनों ही लड़ेंगे तो क्या होगा, संघर्ष होगा, तो जरूर टेंशन होगी ना, तनाव होगा। तो मन और बुद्धि अगर इनका आपस में समझौता होगा तो संस्कार भी तो साथ में काम करेंगे। लेकिन अगर मन बुद्धि का ही संघर्ष है तो क्या होगा, टेंशन तो होगा ही। तो इसलिए अटेंशन माना अलर्ट, हे मन तुम क्या सोचते हो। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, ऐसे ही नहीं ब्रह्मा बाबा को तैयार किया, ऐसे नहीं प्रवेश हुआ और तैयार हो गए ब्रह्मा बाबा। 1932 की बाबा की एक डायरी है, ब्रह्मा बाबा की, आपने सुनी भी होगी, देखी, मैं देखी तो शायद ना भी हो, पर सुना तो जरूर होगा। उसमें कैसे बाबा अपने मन से बात कर रहा है, हे मन तुम कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, आदि आदि बहुत कुछ है उसमें। तो जैसे शिव बाबा ने उसको तैयार किया, और फिर जैसे प्रवेश किया, एक कैसे ब्रह्मा बाबा को एक धक से बेहद का वैराग्य आ गया, पर एक सेकंड में ऐसे नहीं आया, तैयार किया बाबा, शिव बाबा ने उनको पहले से। तो धीरे 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 वैराग्य आता गया आता गया आता गया, और जैसे ही शिव बाबा का कार्य शुरू हुआ तो देखो कितना सब सहज हो गया। शिव बाबा के लिए ब्रह्मा बाबा तैयार थे, उनसे साक्षात्कार होने लगे। तो इसलिए बाबा हमको क्या कहते हैं कि वो अंदर से जगाना है। तो जब हम योग में बैठते हैं तो क्या अंदर में कोई मन को दमन थोड़ी करते, हम पहले तो अपने से बातें करते हैं ना, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना, ये अपने से बातें करनी है। अटेंशन, जिसको अटेंशन कहते हैं, जिसको ही बाबा चेकिंग कहते हैं, क्योंकि चेकिंग हुई फिर चेंज करना सहज है, बिना चेकिंग के चेंज नहीं हो सकता है। और केवल चेकिंग है, चेंज का लक्ष्य है नहीं, खाली चेकिंग है तो भी चेंज नहीं होगा। चेंज करना है पर उसके लिए पहले चेकिंग करनी है। तो क्या है मेरी सोच इस समय, कौन से सोच को आगे बढ़ाना है, कौन से सोच को आगे नहीं बढ़ाना है, बुद्धि क्या कहती है। इसलिए कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो। दुनिया में भले कहते हैं लुक बिफोर यू लीप, हाँ देखो पहले, ऐसे ही नहीं कूदो, पहले तोलो फिर बोलो, हाँ ऐसे ये सब कहावतें प्रसिद्ध हो गई है, पहले तोलो, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसका क्या मूल्य है, तोलो फिर बोलो, कूदने से पहले देखो क्या है वहां। तो मन और बुद्धि एक सिमिट्री में हो उसके लिए जो मन सोचे फिर हमको रुकना होगा। बुद्धि क्या निर्णय देती है, जो अंतरात्मा की आवाज है, और वो तो बाबा कहते वो तो बहुत शुद्ध है आत्मा। इसीलिए भक्ति में क्या कह दिया, आत्मा तो है ही निर्लेप, वो तो है ही शुद्ध, वो तो कभी अशुद्ध होती नहीं। लेकिन हम क्या कहते नहीं, आत्मा ही तो पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है, पर असल में असल रूप में आत्मा तो बहुत शुद्ध है। इसलिए अगर कुछ ऐसे अशुद्ध संकल्प आते हैं तो बुद्धि मन को ब्रेक दे दे और ये दोनों मिलकर काम करे तो देखो मन को शांति जरूर क्यों नहीं मिलेगी। इसलिए हम कई बार कहते ना, कई कहते हैं कि आत्महत्या किसने की, सुसाइड किया, तो सुसाइड कोई ऐसे ही नहीं कोई कर लेता है, कौन, सबको जीवन अपना प्यारा है, लेकिन इतना गलत सोच लिया होगा, कितना गलत सोच लिया होगा, फिर डिप्रेशन में चला गया, गलत ही तो सोच होगी ना, और जब डिप्रेशन में चला गया तो दिमाग तो काम ही नहीं करेगा, फिर जीवन से हाथ धो बैठेगा। और बाबा ने तो हम बच्चों को क्या कहा, ये जीवन बहुत अमूल्य है, भले बीमार पड़े हो, भले बिस्तर पर पड़े हो, परंतु चतिया लगा के भी शरीर को चलाना है, और बाबा को जितना समय मिले याद करना है, जितने श्वास है उसको सफल करना है, क्योंकि ये शरीर मूल्यवान है। तो कहाँ बाबा हमें क्यों इतनी ऊंची बातें सुनाते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चे असल में कितने ऊंचे थे, कितना प्यार है बाबा का हम बच्चों के प्रति। तो इसीलिए बाबा की चाहना भी बहुत है हम बच्चों में। तो कैसे याद और सेवा से हम अपने अंदर में परिवर्तन लाते हैं, अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं, जिस याद के बल से हम अपने ओरिजिनल स्वरूप तक पहुंचते हैं। तो जब मैंने कहा मैं कौन, मेरा कौन, आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप तक आ जाती है। और फिर बाबा कहते हैं जिस स्थिति में आप, जिस स्थिति से आप ऊपर से आए इस सृष्टि रंगमंच पर, उसी स्थिति में वापस जाना है, स्वच्छ रूप में आए शुद्ध पावन होकर के आए, अब वापस शुद्ध और पावन होकर के जाना। बीच में ये मैली चुनरिया कर दी, शरीर भी पतित तो आत्मा भी पतित बना दी। अब पहले आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले, तो उसके लिए पावन बनाने लिए पहले याद चाहिए, और याद के लिए इतनी ऊंची सोच चाहिए। और फिर क्या कहते हैं, इसमें भी नंबर वार है, वो ऊंची सोच माना कैसे आएगी ऊंची सोच, पहले तो ज्ञान होगा कि सचमुच में आत्मा ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप हूं मैं, पवित्र स्वरूप हूं। हाँ, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कमेंट्री में कहते हैं मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। तो एक व्यक्ति था, उसने ये जब कमेंट्री सुनी कहता है बहन जी आप कहते हो मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, पर मैं तो हूँ नहीं पवित्र, मैं कैसे कहूँ मैं पवित्र हूँ, मैं तो अपने आप को धोखा दे रही हूँ, धोखा दे रहा हूँ अगर मैं कहता हूँ मैं पवित्र स्वरूप हूँ जबकि मैं हूँ नहीं। अब उसको क्या जवाब दिया जाए, है या नहीं है? है जरूर, परंतु हम जानते नहीं है ना कि हम हैं, तो इसीलिए कहना पड़ता है कि मैं हूं, और फिर वो अनुभूति करनी है तो ऑटोमेटिकली वो पवित्रता आएगी, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे ना। तो अगर मैं कहूंगी मैं तो पवित्र स्वरूप नहीं हूं, मैं तो बहुत अपवित्र हूं, मैं तो बहुत अशांत हूं, तो कैसे मिलेगी शांति, कैसे बनेंगे पवित्र, क्योंकि मैं तो यही हूं। तो अगर पवित्रता की अनुभूति करनी है, शांति की अनुभूति करनी है, तो पहले वही सोच मन में लानी होगी। किसी बात में सफलता लानी है तो सफलता अभी तक किया ही नहीं है और यही कह देंगे मैं तो सफल नहीं होगा तो कभी नहीं होंगे। अगर करने से पहले ये नहीं मैं सफल जरूर होऊंगा, तो चाहे कितने भी विघ्न आ जाए हम उन विघ्नों को पार करके सफल बनेंगे, पर पहले कह दिया मैं तो सफल नहीं होऊंगा, मैं तो हमेशा ही हारता हूं, तो कभी नहीं सफल होंगे। इसलिए बाबा देखो क्या कहते हैं, हाँ कि जैसे अभी कोई मेडिकल स्टूडेंट ही है, केवल अभी तक पढ़ाई कर रहा है पर पहले से इसको कितना नशा होता है, मैं तो डॉक्टर बनूंगा डॉक्टर बनूंगा। ये थोड़ी कहता मैं पता नहीं बनूंगा नहीं बनूंगा, पता नहीं तो पता ही कट जाएगा। हाँ, पता नहीं कहने से क्या होगा, पता ही कट जाएगा। लेकिन वो पहले से ही संकल्पना कर लेते कि मैं हूं, पहले से ही वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो इसी प्रकार बाबा कहते आपको भी उसी रूप से ही अंदर अनुभव करना है, क्योंकि आप सचमुच हो। कई लोग कहते आप लोग जो कमेंट्री देते हो ना, लाल लाई जलाते हो और फिर आप वो कमेंट्री करते हो तो आप सम्मोहित करते हो। हम कहते सम्मोहित हमको आता नहीं, कैसे सम्मोहन करना होता, हम जानते नहीं, कोई पढ़ाई नहीं की है उसके। हम सम्मोहन नहीं करते किसी का, हिप्नोटाइज नहीं करते, जो वास्तविकता है वो बताते हैं कि आप सचमुच में शांत स्वरूप हो लेकिन आपको पता नहीं है। इसीलिए अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। तो जो आत्मा के मूल गुण हैं उन गुणों का चिंतन करना, पहले उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि ये आत्मा के गुण है और ये मेरे ही गुण है। फिर उसका चिंतन करना, जिसको हम आत्मचिंतन कहते हैं। अब चिंतन करने के बाद फिर निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण भी होता है कि हम जो वास्तव में है वो महसूस कर रहे हैं कि हम है। देखते हैं ना भाई, जैसे आया इंस्पेक्शन किया कि सब ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो ठीक करना है। तो इसलिए आत्मचिंतन के बाद आत्मनिरीक्षण, फिर आत्मनिरीक्षण के बाद अगर कुछ कमी है तो उस कमी को खत्म करना है। फिर कहेंगे आत्मविश्लेषण, एनालिसिस करते हैं ना, तो विश्लेषण करो क्या कमी है, कैसे भरना है, उसके लिए क्या करना होगा और कौन सा चिंतन करना है, ये सब नेचर क्योर में आता है। फिर आत्म विश्लेषण के बाद जब ये मैं अनुभव होता है कि सचमुच मैं तो इतनी ऊंची श्रेष्ठ आत्मा हूं, वो स्वमान की याद को याद हम करते हैं, सब याद के ही स्वरूप है ये। इतने स्वमान बाबा हम बच्चों को देते हैं, इतना नशा चढ़ाते हैं, रोज नए नए टाइटल्स बाबा हमको हर मुरली में देते हैं। तो जब आत्म विश्लेषण करके आत्म अनुभूति करने से पहले आत्म संयम करते हैं, क्योंकि मेरा वही स्वरूप है तो फिर से उस स्वरूप तक पहुंचना है। मेरा वही स्वरूप है जो अंदर से वही जागृत करके बाहर लाना है। तो जब आत्म निरीक्षण हुआ, विश्लेषण हुआ, संयम हुआ, कोई मुझे ऐसी सोच मन में नहीं लानी है जो शुद्ध आत्मा के विपरीत हो, कोई ऐसी सोच मन में नहीं लानी है जो शांत स्वरूप आत्मा के विपरीत हो, क्योंकि मैं कौन यही याद है। और उसके आधार से क्या होगा, आत्मबोध होगा। बोध माना एनलाइटनमेंट, अनुभूति होगी। और जब वो आत्म अनुभूति होगी, उसी के आधार से आत्म परिवर्तन होगा। तब ये परिवर्तन होगा, तब वो जो संस्कार स्वभाव है वो मिटेगा, तब नेचर क्योर होगा। तो अपने स्वभाव संस्कार का नेचर जो है वो उसको क्योर करना है, उसको शफा देनी है, तो ये सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। बस खाली कहना नहीं होता मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। कई लोग इसीलिए तो कहते बहन जी फिर आगे क्या, यहाँ तो बाबा योग के लिए तो कितनी बातें कहते, हर बार आप एक नया अनुभव कर सकते हो, हर बार नया चिंतन कर सकते हो, कितनी गहराई में जा सकते हो। और ये भक्ति मार्ग में तो बस एक मंत्र दे देंगे, कहेंगे बस इसका जाप करो, बस जाप करते रहे तो बोर हो जाते हैं। फिर हाथ में माला होगी, मुख पर वो मंत्र होगा, चलो सामने कोई मूर्ति है तो आंखों के सामने मूर्ति होगी। तो हम यही कहते हैं ना, आंखों को तो काम दिया, उंगलियों को भी काम दिया मन के फेरने का, मुख को भी काम दिया, पर मन को तो काम दिया ही नहीं। इसलिए आज की मुरली थी ना, कबीर के दोहा, कबीर का दोहा है, कौन सा था, हीरा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए रे, कर का मन का छोड़कर अब मन का फेर। तो जैसे नेचर क्योर में शरीर पर कितनी मेहनत करते हैं ना, तो ये आत्मा के नेचर क्योर पर भी तो मेहनत करनी है ना। अपनी आत्मा का ध्यान देना है, क्या सोच रही हूं मैं, तो अपने लिए समय देना अपनी आत्मा के लिए। हम कई बार वीआईपी से जब मिलते हैं ना, तो हम कहते हैं ना उनको कि आप लोगों की डायरी में सबके नाम होते हैं, अपॉइंटमेंट डायरी, इनसे अपॉइंटमेंट, इतने बजे इनसे अपॉइंटमेंट, लेकिन क्या कभी उस डायरी में आपका भी अपना नाम है कि अपने से भी अपॉइंटमेंट है? तो बेचारे मुंह जाते, अपने से अपॉइंटमेंट माना क्या। फिर कहते हैं हाँ हम भोजन करते हैं, अपने लिए अपॉइंटमेंट है ना, वो अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, जॉगिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, ये करते हैं, वो अपने लिए टाइम है। तो हम कहते हैं नहीं, वो आपके शरीर के लिए टाइम है, आत्मा के लिए क्या टाइम देते हो, आत्मा के लिए तो कोई टाइम देता ही नहीं है। तो सच्चा नेचर क्योर माना आत्मा के लिए टाइम देना, अपने संस्कारों को पहचानना, ओरिजिनल संस्कारों को समझना, मन के विचारों को बदलना, बुद्धि को शक्तिशाली बनाना, उसका साथ हर वक्त अनुभव करना। तो देखो आत्मा इतनी स्वस्थ हो जाएगी, जो बाबा कहते हैं ना 21 जन्म पवित्रता सुख शांति संपत्ति सबका मालिक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।